ओम शांति। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सागर तट से मिलने आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सवेरा बन सूरज आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पतझड़ में मधुमास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे राही को सहारा मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे वीणा को स्वर मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पंछी को गगन मिल गया। वैसे बाबा मुझे तू मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे बंजर जमी को सावन मिल गया। जैसे तपस्वी को सार मिल गया। जैसे सुनी रात को चांद मिल गया। जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। बाबा तू मेरा गीत बन गया, तू चिर संगीत बन गया। तू मनमीत बन गया, तू परम प्रीत बन गया। बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया। सभी स्थिर अलर्ट और बाबा की याद में खो जाएंगे।
नैनों में यही खुशी की झलक समा गई है, मेरा बाबा आ गया।
बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। सागर तट से मिलने आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सवेरा बन सूरज आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पतझड़ में मधुमास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे राही को सहारा मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे वीणा को स्वर मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे पंछी को गगन मिल गया। वैसे बाबा मुझे तू मिल गया, जैसे हृदय मंदिर में दीप जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। जैसे बंजर जमी को सावन मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे तपस्वी को सार मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे सूनी रात को चांद मिल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, जैसे रूह में रूहानी चिराग जल गया। बाबा तू मेरा गीत बन गया, बाबा तू चिर संगीत बन गया। बाबा तू मन मीत बन गया, बाबा तू परम प्रीत बन गया। बाबा तू मेरा बन गया, बाबा मैं तेरा बन गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया। मेरा बाबा मेरे पास आ गया, मेरा बाबा मेरे पास आ गया।
किसी राजा ने अपनी राजकुमारी को एक बहुमूल्य हार नेकलेस भेंट में दिया और एक दिन अचानक वो हार लुप्त हो गया। कहाँ चला गया पता नहीं, किसने ले लिया या चोरी हो गई पता नहीं। और राजकुमारी को वो हार अत्यंत प्रिय था। वो राजकुमारी बेचैन हुई, अपने पिता से कहा कि मुझे वो हार चाहिए, कुछ भी करो। मंत्रियों ने कहा शायद कोई पक्षी हार ले गया और कहीं डाल दिया। राजा ने घोषणा की जो भी हार ढूंढ के देगा उसे बहुमूल्य पारितोषिक कोई पुरस्कार दिया जाएगा। चारों तरफ लोग उस हार को ढूंढने में लग जाते हैं। एक युवक एक रास्ते से जा रहा है और वो भी हार को ढूंढ रहा है और अचानक उसे पानी में हार चमकता हुआ दिखता है। उसे खुशी होती है, पानी गंदा है पर हार दिख रहा है। फिर भी वो पानी में हाथ डालता है, हाथ हिलाता है पर वो हार उसके हाथ में नहीं आता है। परेशान होता है, फिर पानी में खुद उतरता है, हार नहीं दिखाई देता। पर जब बाहर आता है तो हार फिर भी दिख रहा है। तीसरी बार वो छलांग लगाता है, हाथ पैर पटकता है, फिर भी हार उसे नहीं दिखता है। पर जब बाहर आता है तो देख रहा है, हार दिख रहा है। उसी समय एक योगी वहां से आ रहा होता है, एक सन्यासी। सन्यासी पूछता है क्या हो गया, क्यों परेशान है। वो कहता है कुछ नहीं, वो छिपाता है। डर लगता है कभी सन्यासियों का भी क्या भरोसा, इसको यदि बता दिया जाए तो कहेगा मेरा है, वो कहता है कुछ नहीं, आप जाओ। सन्यासी फिर पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बताता है कि राजकुमारी का हार खो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और हार देखो वो दिखाई दे रहा है, पर मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ, हार हाथ में नहीं आता, जबकि स्पष्ट दिख रहा है, पानी के अंदर है। सन्यासी कहता है, हार पानी में नहीं है, हार ऊपर डाली में लटका हुआ है, नीचे उसका प्रतिबिंब है, जो रियल है वो ऊपर है, जिसे तुम पकड़ रहे हो वो अनरियल है, जिसके पीछे तुम लगे हो वो एक छाया है, एक भ्रम है, और सत्य जो है वो भीतर है और ऊपर है। हम किसे पकड़ रहे हैं, रियल को या आर्टिफिशियल को? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? वो जो सत्य है वो, या जो दिखाई देता है पर है नहीं, इल्यूजन, किसी भ्रम को? हमें लगता है ये मेरा वो मेरा, ये पद मेरा वो पदवी मेरी, ये व्यक्ति मेरा वो व्यक्ति मेरा, पर जिसे जिसे हम मेरा कह रहे हैं, क्या वो मेरा है या केवल उस रियल मेरे की परछाई जो कि नितांत झूठी है? इस भट्टी का लक्ष्य है हर झूठ से बाहर निकल आना, हर असत्य के पीछे जो हम पागलों की तरह भाग रहे हैं उससे बाहर निकल आना, और उसे ढूंढना जो सत्य है, और उसे पाना जो अविनाशी है, जो निरंतर है। द क्वेस्ट, द सर्च फॉर द ट्रुथ, सत्य एक खोज है। जो मेरा सत्य है वो हो नहीं सकता कि आपका भी होगा। जो बुद्ध का था और क्राइस्ट का था और बड़ों का था और वरिष्ठ भाई बहनों का था, आवश्यक नहीं है कि वो आपका भी होगा और मेरा भी होगा। हरेक को अपना सत्य स्वयं ढूंढना होगा। हरेक की परिस्थिति अलग अलग है। जहाँ वो जन्मा, जिस परिस्थिति में बड़ा हुआ, जो गांठें उसने बांधी, वो गांठें हरेक की अलग अलग है। उनको खींच कर नहीं खोला जा सकता है। इसलिए जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में एक शब्द है, निर्ग्रंथ। महावीर के लिए मुख्य रूप से कहा जाता है निर्ग्रंथ, जिसने अपनी सारी गांठें खोल दी, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, ऑल द नॉट्स, जो मन में गांठें हैं, कोई बंधन, कोई मोह, कोई डर, कोई एंग्जाइटी, कोई पैनिक, कोई फोबिया। बुद्ध सभा में आते एक दिन और अपने सभी शिष्यों को एक एक रुमाल देते हैं, और उस रुमाल में वो कहते हैं 3 गांठें लगाओ, बांधो, और फिर सबसे कहते हैं अब इसको कैसे खोलोगे, और खुद ही कहते हैं इस रुमाल को खींचो। रुमाल को खींचने से क्या होगा, गांठें खुलेगी क्या और टाइट होगी? अगर किसी गांठ को खोलना है तो उसे वैसे ही खोलना होगा जैसे वो बांधी गई थी, जिस तरीके से उसको बांधा गया था वहीं जाकर खोलनी होगी। यदि समस्या पास्ट में है कहीं, तो उसी समस्या के पास टाइम ट्रैवल करके पहुंचना होगा, उसको खोलना होगा और फिर वर्तमान में लौटना होगा। हम केवल कहते रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हो जाएगी नहीं, वो ग्रंथि है, वो गांठ है, नॉट। इट हैज टू बी ओपन्ड इन द वे इट हैज बीन टाइट। यदि किसी व्यक्ति का किसी में मोह है और वो व्यक्ति उसे छोड़कर चला जाता है और उसे दुख होता है और उसकी यादों में है वो, और फिर सोचता है बाबा को याद करूंगा और सब भूल जाऊंगा, ये नहीं होगा। 2026 में इंग्लिश भाषा में एक नया शब्द ऐड हुआ है, इमोशनल रेंट। कोई है जिसे हमने अपना समझा, अपना माना, व्यक्ति या वस्तु या कुछ और वो अभी नहीं है और वो चला गया, फिर भी हम उसे पकड़े हुए हैं, उसकी यादों में हैं, हम मैसेज देख रहे हैं, ओल्ड चैट्स, हिस्ट्री, गिफ्ट्स, मेमोरीज, उसको याद करें। वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, उसका एक नया जीवन चालू हो चुका है, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसने कट ऑफ कर दिया, अपने जीवन में आगे बढ़ गया, पर हम उसे पकड़े हुए हैं। सो वी आर पेइंग मंथली रेंट, इमोशनल रेंट। इसलिए वहां जाना होगा जहां वो गांठ बंधी, उसको वहां से खोलना होगा। जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, उसे दबाया नहीं जा सकता पहला, उससे भागा नहीं जा सकता दूसरा, उससे लड़ाई भी नहीं की जा सकती। उससे लड़ेंगे तो और शक्तिशाली होगा। तो मेथड क्या है? मेथड है प्रेममयी स्नेहमयी दृष्टि, अमृत वेला। अपने जीवन को देखना है पूरी तरह से, कहाँ क्या क्या हुआ, और उसे दृष्टि देना, और केवल अमृत वेला, और वो भी बीच में, अमृत वेला के बीच में ये कार्य करना है जहां साक्षी भाव रहे। अगर हमने दिन में किया तो वी गेट आइडेंटिफाइड, वो याद फिर से आ जाएगी और हम उसी में स्थित हो जाए, हम साक्षी नहीं रह पाएंगे। हमें उसे देखना होगा। जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, कैसी भी हो, जैसे कोई हॉरर सीन हो तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, देखते जरूर है, ऐसे ऐसे करेंगे परंतु ऐसे देखेंगे। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार डर लगता है, तीसरी बार डर कम कम होते जाएगा, और चौथी बार और पांचवी बार और छठवीं बार फिर डर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमने कई बार देख लिया है, तब वो गांठें खुलनी चालू होगी। चित्त की ऐसी दशा जहां सारी गांठें खुल गई, जहां मन निर्विकार हो गया, अपने आप मन मना भाव में स्थित हो जाएगा, तब चित्त एकाग्र होगा। जस्ट वन थॉट, वो सारा भटकाव बंद होगा। नहीं तो हमारा मन अतीत में ही भटकता रहता है। प्रेजेंट में रहने के लिए कुछ करना होगा ताकि मन स्थिर हो जाए, और उसकी एक टेक्निक है ब्रेथ अवेयरनेस, जो आपको यहां से जाने के बाद भी दिन में कई बार करते रहना। ये शरीर है और ये आत्मा, इन दोनों को जोड़ने वाला है प्राण, श्वास। यदि हम इस श्वास को देखने लगे तो ये श्वास को देखते देखते हम अपने विकारों को देखने लगेंगे। जैसे ही श्वास को देखते देखते सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये एक भाग है तो ये 9 भाग है और हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, समान दे रहे हैं, परंतु ये जो भीतर छिपा है उसमें गहरी घृणा भरी है। किसके लिए? किसी ने दुख दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने दर्द दिया, कोई बचपन की एक दर्दनाक घटना, सम डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इट इज देयर इन द सबकॉन्शियस और हमें पता भी नहीं वो है, वो अचानक निकल के बाहर आती है हो और हिला देती है हमको और फिर गायब। क्यों पैनिक अटैक्स होते हैं? अचानक पैनिक अटैक, अचानक घबराहट, अचानक बेचैनी, अचानक दुस्वप्न, डर लगता है ये स्वप्न क्यों आ गया, ऐसा क्यों आ गया, वैसा क्यों आ गया। या कोई व्यक्ति सामने आ जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता और यहां दर्द होने लगता है। तो श्वास हमें सबकॉन्शियस से जोड़ता है, श्वास हमें विकारों को देखने में मदद करेगा, और तीसरा, इस श्वास को देखते देखते हम अंतर मन को शांत कर सकते हैं। जब भी हमारे मन में कोई भी विकार उत्पन्न होता है, अपने आप श्वास की गति बदल जाती है। क्रोध आते ही श्वास चेंज, काम विकार जगते ही श्वास की गति तेज होने लगती है, लोभ तेज, अहंकार, अपने आप श्वास की गति बढ़ जाती है। आपको लेट हो रहा है, आप भाग रहे हैं, ट्रेन छूटने वाली है, श्वास की गति तेज है, ये अपने आप हो रहा है, हम कैसे उसको कंट्रोल करें? अचानक कोई डरावना सीन, कोई जानवर सामने आ जाए, डर लगता है। रात में हम सोते हैं, ठंड लगती है, कब ओढ़ने के लिए हमने ले लिया हमें भी पता नहीं चलता, ये हमने कॉन्शियसली नहीं किया है, अपने आप हो रहा है। इसलिए ये विकारों को जीतना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि वो बहुत गहराई में चले गए। इसलिए ऊपर ऊपर से जो पुरुषार्थ चल रहा है कॉन्शियस लेवल पर, वो अंदर नहीं जा रहा है। तो एक अभ्यास है, उसे कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। उसमें करना क्या है? केवल श्वास को देखना है, और श्वास को देखने के बाद हमें पता चलेगा मन कितना चंचल है। उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ना, ना नंबरिंग जोड़ना 1 2 3 4 1 2 3 4, ना कोई संकल्प जोड़ना, ना कोई मंत्र जोड़ना, केवल शुद्ध श्वास, प्योर ब्रेथ। अगर इसको 1 मिनट तक हम लेके जा सके तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, जस्ट 1 मिनट। क्योंकि इससे और एक चीज पता चलेगी, हमारा मन कहाँ भागता है। श्वास पर ध्यान देना, यहाँ श्वास आया गया, आया गया, बस उसकी जानकारी हो, श्वास आ रहा है जा रहा है। प्राणायाम नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, केवल साक्षी भाव से देखना, और देखते देखते ही मन जाएगा अतीत में या भविष्य में, उसको फिर लेके आना। इसी से हमको पता चलेगा कि मन तो वर्तमान में है ही नहीं, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे स्थिर, और एग्जैक्टली 1 मिनट यहां पर होठ के ऊपर, ऊपर वाले होठ के ऊपर और नासिका के नीचे, फोकस एंटायर अटेंशन हियर एंड जस्ट सी द ब्रेथ। द The breath which is coming in and the breath which is going down, ना हाथ लगाना है, ना numbering करना है, ना counting करना है, ना कुछ जोड़ना है, ना कोई संकल्प ऐड करना है. Just pure breath awareness. And if the breath is very slow, जो पता ही नहीं चल रहा है, तो एक दो लंबा श्वास लेके हमें पता चले जोर से श्वास लेके श्वास है. Just see for 1 minute. सभी बैठेंगे, आंख बंद, focus on the breath. श्वास आ रहा है, जा रहा है. एक दो लंबे श्वास ले लेंगे तो पता चल जाएगा. श्वास आ रहा है, जा रहा है. हर एक श्वास की जानकारी, श्वास पर पहरा लगा देंगे. श्वास भीतर, श्वास अंदर, श्वास भीतर, श्वास अंदर. केवल देखना है स्टार्ट. मन को कहीं नहीं जाने देना, केवल श्वास. पूर्ण जानकारी, श्वास आ रहा है, जा रहा है. दाई नासिका से आने दो, बाई नासिका से आने दो. छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, केवल देखना है. ठंडा है, गर्मा, गर्मी वाला है. ओम शांति. दिस वन सिंगल पावरफुल एक्सरसाइज विल काम द माइंड. जहां मन में उत्तेजना उत्पन्न हो रही है, ऑफिस में है और बॉस ने बुलाया है. क्यों बुलाया है वो कारण नहीं पता, बस बुलाया है. उस समय क्या होता है? धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़. अचानक मीटिंग रखी गई है. क्यों रखी गई है? एजेंडा पता नहीं है, बट इमरजेंसी मीटिंग. धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़. फोकस ऑन द ब्रेथ. दिस वन सिंगल एक्सरसाइज विल काम द माइंड. और एक और चीज इससे हो जाएगी, हम अपने विकारों को देखने लगेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे, ब्रेथ शांत होगी, और इंपॉर्टेंट चीज, साक्षी भाव पुष्ट होगा. वी बिकम द विटनेस. जो हम कहते हैं साक्षी होकर देखो, अरे किसको देखो और कैसे देखो? वॉच द ब्रेथ. ये शरीर, ये आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, और एक फोर्थ लिंक है ब्रेथ. और जब मन शांत हो जाए तब फिर मैं आत्मा हूं, वो आगे का अभ्यास है. और वहां से फिर मन मना भाव की यात्रा चालू. हम आके आते हैं भाग भाग के बाबा के कमरे में बैठते हैं और योग चालू करते हैं. ना आत्माभिमानी स्थिति बनी है तो परमात्मा अभिमानी स्थिति कैसे बनेगी? देहभान से ही योग चालू होता है, केवल इस संकल्प के साथ कि मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म वतन में हूं, परम धाम में हूं. उस मैं आत्मा हूं के पहले दो स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज है श्वास. सेकंड स्टेज, पूरे बॉडी को एक बार स्कैन करना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर. हमारे पूरे बॉडी में सेंसेशंस है. ये दो चीजें सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, एक ब्रेथ और दूसरा सेंसेशंस. अगर यहां मुझे कोई चुबाता है कुछ, तो बिना कुछ कहे मैं हाथ पीछे लेता हूं. कैसे? बिकॉज दिस इज सेंसेशन. पेन इज कनेक्टेड टू द सबकॉन्शियस. वहां कोई चिंतन मनन कुछ करता हूं मैं? कुछ भी नहीं, अपने आप. सो इट इज द अवचेतन मन जिसमें चीजें जुड़ी हुई है. हम जा रहे हैं और अचानक हमारी कोई निंदा करता है, वो सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है. हम जा रहे हैं, कोई क्रिटिसाइज करता है, विरोध करता है, फीडबैक देता है कि ये नहीं करो वो करो, तो ये सारी बातें कहाँ चली जाती है? भीतर. कैसे? अचानक कोई कुछ बोलता है, रोना आ जाता है, क्या हमारे पास ज्ञान की कमी है? ज्ञान तो बहुत है, पूरी मुरलियां याद है, तो उसके बावजूद भी आंसू आ गए, क्यों? सेंसेशंस। तो इससे पहले कि हम मन मना भाव को समझे, दो चीजें समझना बहुत आवश्यक है। द फर्स्ट इज ब्रेथ एंड सेकेंड इज सेंसेशंस। ये पांच इंद्रिय, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांच विषय, ये इंद्रिय टकराते हैं। जैसे कोई आवाज आया, जैसे कुछ खाया स्वाद, जैसे कोई स्मेल, जैसे कोई स्पर्श, जैसे कोई चित्र, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये पांच विषय इनसे टकराए, टकराते ही सेंसेशन क्रिएट होते हैं। ये सेंसेशन तीन प्रकार के हैं, पहला सुखद, दूसरा दुखद और तीसरा न्यूट्रल। जैसे कोई गीत सुना, बहुत अच्छा लगा, प्लेजरेबल, सुखद। कोई ध्वनि सुनी, कर्कश ध्वनि, दुखद। किसी ने प्यार से हाथ लगाया, बहुत अच्छा लगता है, सुखद। किसी ने मारा, दुखद। सुगंध है फूलों की, सुखद। दुर्गंध है, मुंह बदलता है अपने आप। जो फेवरेट है हमारा, वो खाया, सुखद। हा हा हा, पूछेंगे और है क्या? और जो हमारा फेवरेट नहीं है, डाइनिंग में जाते ही वो सब्जी दिखी तो आज भूख नहीं है, दुखद। तो सेंसेशंस आर सुखद दुखद, न्यूट्रल भी होते हैं, असुखद अदुखद। जो सुखद है उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, और जो दुखद है उसके प्रति हमारा द्वेष। पूरे अध्यात्म में विकार केवल दो ही है, द्वेष और राग। जो जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति द्वेष। जो हमारी तारीफ करता है, स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, महिमा करता है, ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं। परंतु कोई आके हमारे क्रिटिसाइज करे, विरोध करे, ब्लेम करे, अब्यूज करे, हम उससे थोड़ा दूर ही रहते, वो इधर से तो हम इधर से, दुखद। तो द्वेष उत्पन्न हुआ, कुछ सुना राग द्वेष, कुछ स्पर्श हुआ राग द्वेष, सुगंध राग द्वेष, कुछ खाया राग द्वेष, कुछ देखा अच्छा है बहुत, राग उत्पन्न होता है, ये फूल कितना अच्छा है मुझे चाहिए, राग। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, द्वेष। तो विकार दो ही है। और एक आगे की चीज, ये जो भी सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, सुखद या दुखद, इनका एक नेचर है। इस नेचर को समझना है, और नेचर है कि वो ट्रांजिटरी है, अनित्य है, आते हैं और चले जाता है। यहाँ पे खुजली हो रही है, ये सेंसेशन है, खुजली इस सेंसेशन, ईचिंग, दर्द हो रहा है घुटने में, सेंसेशन है वो, इट इज टेम्पररी। जैसे बादल आते चले जाते हैं, वैसे सेंसेशन आते हैं चले जाते हैं, पर हम उसका हम वर्णन करते रहेंगे, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, तो दर्द और होते रहेगा। एवरी सेंसेशन इज ट्रांजिटरी, अनित्य है, आया और गया। उदय होता है, व्यय होता है, उदय व्यय, उदय व्यय। इसी सेंसेशन को साक्षी होकर देखना साक्षी भाव को पुष्ट करेगा, और यही है साक्षी की साधना। क्या करना है? पूरे शरीर में जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है उन्हें देखना है, कहां क्या उत्पन्न हो रहा है। यहां हमने देखा इतना एरिया, यहां दर्द है, मैं इस दर्द को देख रहा हूं, देखते देखते वो विलीन हो जाएगा, फिर इतना देखा, फिर इतना देखा, टुकड़े टुकड़े, इंच 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 इंच, पूरे शरीर पर मन को दौड़ाना। इससे और एक काम होगा, हम मन को आदेश दे रहे हैं, मन गर्दन की ओर जा, यहाँ देखो कौन से सेंसेशन से, यहाँ दुखाव है, तनाव है, खुजली है, दर्द है, धड़कन हो रही है, यहाँ सेंसेशन से, यहाँ कुछ चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ दर्द है। अगला प्रश्न है, ये सेंसेशंस आते कहाँ से हैं? पहला कारण भोजन, अत्यधिक भोजन किया उस अनुसार शरीर में सेंसेशन, अच्छा जो भी करो। दूसरा प्रकृति, चोट, कोई एनवायरमेंटल घटनाएं, और उन सब का एक कारण होता है पूर्वजन के संस्कार। अब करना क्या है? अब हमने जाना विषय, विषय वस्तु टकराते हैं, संवेदना उत्पन्न हुई, संवेदना सुखद दुखद न्यूट्रल, इसको हमने स्वभाव समझा कि ये टेम्पररी है, और फिर हमने देखा इसको साक्षी होकर देखना है, और देखने से क्या होगा, देखने से धीरे धीरे ये जो राग और द्वेष की गांठें और ग्रंथियां निर्माण हो रही है वो नहीं होगी, हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होगा जिसको कहते हैं समत्व भाव, इक्विपॉइस, इक्वानिमिटी, स्टेबिलिटी। योग में, गीता में जिसको स्थित प्रज्ञ योगी कहा गया है, बाबा जिसको कहते हैं सुख दुख, हार जीत, जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान, सब में समान, ये योगी की परिभाषा है। तो ये सब तो बाहर हो रहा है, हमको काम कहाँ करना है? इधर। तो इस अभ्यास में क्या करना है? एक तो कहा ब्रेथ को देखना, बीच बीच में दिनचर्या में कई बार, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कार में पीछे बैठे हो, ऑफिस में हो, टाइम है, फोकस ऑन द ब्रेथ एंड सी द ब्रेथ, वन। सेकंड, स्कैन द बॉडी, होल बॉडी को स्कैन कर लेना है, ऊपर से लेके तो नीचे तक, आइडियली वन स्कैनिंग टेक्स 10 मिनट। यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, यहाँ यहाँ यहाँ, फर्स्ट दिस, देन फेस, नेक, राइट, लेफ्ट, ट्रंक, पेट, पीठ, छाती, पेट, पीठ, कमर, बोथ लेग्स, एक भी हिस्सा ना हो शरीर का जो हमने स्कैन ना किया हो। और ये करते 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 धीरे धीरे कुछ और हो जाएगा, और वो और है ये जो स्थूलता है शरीर की, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हमारा शरीर बना हुआ है ऑर्गन से, ये स्किन है, इसके अंदर ऑर्गन से, ऑर्गन किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने हैं? एटम से। एटम किससे बने हुए हैं? न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, वो किससे बने हैं? गॉड पार्टिकल, वो किससे बने हैं? वाइब्रेशंस। तो एक ऐसी अवस्था आएगी ये करते करते कि पूरा शरीर का जो घनत्व है वो टूट जाएगा, और शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, वेव्स एंड वेवलेट्स, वेव्स एंड वेवलेट्स, ऊपर से नीचे तक शरीर जैसे है ही नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र के छाती पर हाथ रखते हैं और वो चिल्लाता है, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है, टुकड़े 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 हो जाएंगे, स्थूलता, विघटन विघटन विघटन, डिविजन डिविजन डिविजन, वेव्स वेव्स वेवलेट्स, इसको कहा जाता है धारा प्रवाह। एक ऐसी अनुभूति होगी कि शरीर है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, फर्स्ट राउंड, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और ये करते करते स्थूलता नष्ट होगी और अनुभव होगा कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। ये जो माइक है और मैं हूँ एक जैसे ही है, इसको, इट इज मेड अप ऑफ वाइब्रेशंस, द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वाइब्रेशंस, क्वांटम फिजिक्स। ये है सेकेंड स्टेज ऑफ द योग, और फिर हम चालू करेंगे मैं आत्मा हूं। बिफोर फर्स्ट गोइंग थ्रू दीज टू स्टेजेस, यहां से अशरीरीपन पहले ही आ गई है, बिना ये कहे कि मैं आत्मा हूं, हमने आत्मा हूं कहा ही नहीं अभी तक, केवल श्वास को देखा, संवेदना को देखा, और ये दो काम करते ही अशरीरी पहले ही हो गए। नाउ यू बिगिन, आई एम नॉट बॉडी। फिर यहां से सब कुछ आगे वो आप सबको पता है, तो सभी फिर से स्थिर बैठेंगे। और ये दो स्टेजेस है जहां विजुअलाइजेशन होता है और ब्रेथ अवेयरनेस होती है और बॉडी स्कैनिंग होती है, या फिर प्राणायाम जो लोग करते हैं, ये सारी आईज क्लोज के साथ की जाती है। राजयोग आईज ओपन, दृष्टि आईज ओपन, बाबा से शक्ति लेना आईज ओपन। पर जहां विजुअलाइजेशन है वो आईज ओपन के साथ भी किया जा सकता है, बट आईज क्लोज कहां और आईज ओपन कहां, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ध्यान में जाती है दादी, आईज क्लोज। भोग लगाया जाता है, आईज क्लोज। दृष्टि दी जाती है, आईज क्लोज, आईज ओपन, दृष्टि आईज ओपन। तो कहां आईज ओपन, कहां आईज क्लोज। साक्षात्कार होता है लोगों को आईज क्लोज, और हम बाबा को देखते, बाबा कहते मुझे देखो, बाप सामने बैठा है, आंखों में तेल डाल दो और मुझे देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, उससे दृष्टि लो, उससे शक्ति लो, ताकि वही अवस्था दिन भर भी चलती रहे आत्माभिमानी की। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बॉडी स्कैन, सभी फिर से स्थिर बैठेंगे, अलर्ट, आंख बंद, सिर के सिरे से पांव तक पूरे शरीर को देखना है, कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा कोई भाग नहीं, अंग नहीं, जहां कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले फेस स्कैन, द फेस, कहाँ क्या हो रहा है। करना कुछ नहीं है, केवल देखना है, कहीं तनाव है, कहीं खुजली है, कोई टेंशन है चेहरे पर, केवल देखो उसको। आंखें, नाक, होंठ, गाल, कान, गर्दन, राइट शोल्डर, राइट आर्म, राइट फोर आर्म, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श, लेफ्ट आर्म, फोर आर्म, हैंड्स, फिंगर्स, चेस्ट, पेट। बस मन को घुमाते जाओ, पीठ, कमर, कहाँ क्या हो रहा है देखो और आगे बढ़ जाओ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं खुजली, कहीं धड़कन, कहीं फड़कन। राइट लेग ऊपर से नीचे तक, और उसको रिलैक्स छोड़ते जाओ। कुछ मांसपेशियों में जो तनाव है उसको रिलैक्स कर दो। देखो अपने आप कुछ ना कुछ सेंसेशन अनुभव होंगे। थोड़ी देर देखो और आगे बढ़ जाओ। कहीं कोई भी सेंसेशन नहीं है, आगे बढ़ जाओ। कहीं सुखद, कहीं दुखद, तटस्थ भाव। फिर से सिर के सिरे की ओर, चेहरा, गर्दन, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, छाती, पेट, पीठ, कमर, राइट लेग, लेफ्ट लेग। शरीर का एक भी हिस्सा छूटने न पाए। तीसरी बार संवेदनाओं को देखेंगे। हर एक सेंसेशन अनित्य है, आ रहा है, जा रहा है, पूरे शरीर में केवल सेंसेशंस है, और ये सेंसेशंस सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं। छाती, दोनों हाथ एक साथ, स्कैन द एंटायर बॉडी, स्वीप एंड स्कैन, दोनों हाथ, दोनों पैर, पेट, जहां जो हो रहा है केवल देखें। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक, पूरे शरीर में तरंगे ही तरंगे अनुभव हो रही है। वापस सारा ध्यान श्वास की तरफ, श्वास आ रहा है, जा रहा है। एक बार श्वास को देखना है, एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक एक सेकंड में स्कैन करना है, नीचे से ऊपर। एक बार स्कैनिंग, एक बार ब्रेथ, ब्रेथ स्कैनिंग। अनुभव होगा शरीर की स्थूलता टूटते जा रही है। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चेतन बिंदु। ओम शांति। तो जब भी योग करो, क्विकली फॉलो दीज टू, ब्रेथ, माइंड शांत होगा, स्कैन, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर। ये कर लिया बेसिक वर्क्स, देन आगे की स्टेजेस बहुत आसान होगी। लंबा लंबा समय तक हम अशरीरी रह सकेंगे, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति अशरीरी अवस्था में ही होती है। केवल पढ़ने से नहीं, ज्ञान वाइब्रेशंस के रूप में आत्मा में जाएगा परमात्मा से। देन द जर्नी ऑफ मन मना भव स्टार्ट्स। पहले मन को हमने वश में किया, मन को कहा इधर जा, इधर जा, इधर जा, उसको ऑर्डर दिया। तो ये भी एक स्वराज्य अधिकारी की ट्रेनिंग है। मन को कहा पैर में जा, मन को कहा राइट लेग, लेफ्ट लेग, मन को कहा देखो उस संवेदना को, कुछ करना नहीं, यहां खुजली हो रही है, खुजली को देखो। और इससे और एक होगा, हम लंबा समय स्थिर बैठ सकेंगे एक ही अवस्था में। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शरीर हिल रहे है कंटिन्यूअस योग में, फिर अनुभूति नहीं होती। तो ये जो मन मना भाव है, ये प्रैक्टिस है उस परमात्मा के याद की। और आत्मा आठ अवस्थाओं से गुजरेगी उस मन मना भाव में, जिसकी अभी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम डाइनिंग में जाएंगे, बाहर बारिश हो रही है, वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहली अवस्था है चेतना की, विरह की अवस्था, बाबा से विरह की अवस्था अनुभव हो कि वो मेरा प्रियतम है, मैं उससे दूर हूँ, मुझे उससे मिलना है। एक खींच हो, खींचे वो जब हो जाए, सताने वाली याद जिसको कहते हैं, जैसे गोपियों की अवस्था थी, वो जबरदस्ती नहीं कर रही थी। जैसे मीरा की अवस्था दिखाई है भक्ति मार्ग में, वो कोई सिंगिंग कंपटीशन, उसने कोई सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे या कोई डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे, वो बाहर की अभिव्यक्ति थी। शी वॉज लॉस्ट इन लव। सुबह हमने कहा था योग की एक परिभाषा है पांचवें नंबर की, लगन में मगन। वैसे मनमना भाव के लिए पहली एक स्टेज जो आएगी वो है विरह, विरह की आग, एक वेदना। वो विरह जितना, इसलिए बाबा कहते बांधेलिया जो होती है कैसे याद करती है बाबा को, बहुत तीव्र होती है उनकी याद, बहुत तीव्र। वैसी याद, वैसी विरह अग्नि। भक्ति मार्ग में दिखाया है चैतन्य महाप्रभु तीन अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था जब वो होश में है तो भजन कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब वो भजन नहीं कर रहे और सामान्य अवस्था में होते हैं, वो विरह की अग्नि उनके अंदर जलती है कि मैं उससे दूर क्यों हूं। तीसरा, जब वो एकदम ही मौन होते हैं तो एक उनके भीतर एक आग लगती है, हे कृष्ण 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 कृष्ण। These are the three stages of consciousness, जहां आत्मा तड़पती है कि मुझे तू चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। वहां फिर टाइमलेसनेस की अनुभूति होती है, योग की सर्वोच्च अवस्था में चेतना की तीन अवस्थाएं, टाइमलेसनेस, समय पता ही नहीं चलता है, बॉडीलेसनेस, ईगोलेसनेस। हम फिर योग में इतना देर बैठ गए, हमें पता ही नहीं कितना, एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, तीन घंटा हुआ। और जब कोई अनुभव नहीं हो रहा है तब हम घड़ी देखते रहते हैं, कब 4:45 बजेंगे, कब 4:45 बजेंगे, कब गीत बजेगा, ये हो गया पूरा एक, इसको हमने वो कर दिया एक रूटीन, गए बैठे, मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन, परमधाम, सतयुग, द्वापर, संगम युगी ब्राह्मण, बाबा से संबंध, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, कस्टमर, सेम रूटीन, फिर सकाश हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बातें, वार्तालाप, चिट चैट, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, धुंधला धुंधला है सारा। वी नीड टू रिफाइन अवर मेडिटेशन। तो पहली अवस्था है पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और उसमें पीड़ा है थोड़ी, प्रसव पीड़ा जैसी पीड़ा, बट बड़ी स्वीट दर्द है वो। दूसरी अवस्था है बेचैनी, पर कैसी बेचैनी, संसार की नहीं, डिवाइन रेस्टलेसनेस, डिवाइन डिसकंटेंट, कि मुझे इस संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, इस संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता, भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा कहती है, यहाँ का नहीं अच्छा लगता है कुछ, सुबह की मुरली बाप की याद में रोमांच आ जाए, खुशी की उछले आए भीतर से, अंदर से, ये नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, नॉर्मली आ जाए, ये नहीं अच्छा लगता, एक सहज वैराग की अवस्था, यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता, कर रहे हैं सारी सेवाएं कर रहे हैं, फिर भी मन में है, जैसे सुबह कहा था, होम सिकनेस। वैराग सहज उत्पन्न होना बहुत बड़ा भाग्य है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, मुझे नहीं चाहिए ये संसार, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, ये स्वप्न है जैसे दुस्वप्न है, नाइटमेयर है, विद इट्स चर्चेस एंड ब्लैक गार्डिज्म, विद इट्स शिकैनरी, विद इट्स हाउलिंग राइटियसनेस ऑन द सर्फेस एंड अटर हॉलोनेस विद इन, विद इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, यहाँ सब बिक रहा है, ऊपर ऊपर से लोग दिखाते हैं कितने अच्छे हम, कितने अच्छे, पर भीतर खालीपन है, छल कपट है, विद इट्स चर्चेस एंड शिकैनरीज एंड ब्लैक गार्डिज्म, विद इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, यहाँ सब बिकता है, खरीद फरोख्त, हर संबंध एक व्यापार है, इधर कौन किसका, सब स्वार्थ, ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए, इस संसार के प्रति भी वैराग कम ना हो। अगर वैराग का चिंतन कम हो जाता है तो हम चिपक जाते हैं फिर वस्तुओं से, पैसों से, पोस्ट से, सुविधाओं से, और कब अंतर में पतन हो रहा है ये पता ही नहीं चलता है, और ऊपर से हम सबके ऊपर स्टैंप लगाते हैं सेवा, श्रीमत, फिर तो और ही पता नहीं चलता है। इसलिए दूसरा है एक बेचैनी, पर कैसी बेचैनी, डिवाइन रेस्टलेसनेस, यहाँ का मुझे पसंद नहीं है, यहाँ का मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो चाहिए, समथिंग हायर, समथिंग अफार फ्रॉम द स्पीयर ऑफ अवर सॉरो। कवि लिखता है, द डिजायर ऑफ द मौत। तीसरा है धुन, क्या लग जाए एक धुन, आज की मुरली में भी ये शब्द आया है, धुन, एक धुन, एक नशा, एक रुहाब, धुन धुन धुन, बस मुझे अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, इस मन मनाभव की अवस्था को इतना ऊंचा कर देना है कि संसार की कुछ भी परिस्थिति आने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, धुन लग गई है, जैसे एक लगन लग गई है, जैसे कोई आईएएस की एग्जाम प्रिपेयर करता है तो कैसी उनकी अवस्था होती है, पूरी ऐसे कमरे में बैठते हैं दोस्त मिल के, प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, उन्हें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है संसार में, घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, बस अपनी पढ़ाई 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 पढ़ाई, दिन रात पढ़ते रहते। उनके पढ़ाई के अतिरिक्त तो कुछ भी वो नहीं देखेंगे। वैसे हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, इतना उस मुरली के प्रति लगन, पढ़ाई बिजी कर देना है मन को, तो इसको कहते हैं धुन। चौथी अवस्था है धन्यवाद। हर परिस्थिति में बाबा का धन्यवाद देते रहना। यह धन्यवाद ही मन बना भव है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए। उदाहरण दिया जाता है दो भाइयों का, दोनों दिन भर सेवा करते रहे, लेट हो गया, डाइनिंग में गए, देखा वहाँ कुछ भी नहीं है, रोटियाँ पड़ी है वो भी कड़क कड़क टुकड़े। एक भाई कहता है इतना दिन भर सेवा करो और खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, गुस्सा होता है, चला जाता है, आज मुझे खाना ही नहीं है, जाओ। रात भर नहीं सो सकता है, पेट में कुछ नहीं है। दूसरा भाई कहता है ओहो बाबा क्या तेरी महिमा गाओ, तुमने रोटी तो रखी है वो भी तोड़ के रखी है। खुशी खुशी से खाता है और आराम से सो जाता है। संतुष्टता का भाव, जो मिला है बहुत मिला है। मराठी भाषा में एक कविता है, राजा सजी महाली सौके खदी मिड़ाली ती सर्व प्राप्त धाली या झोपड़ी तमाजा। कवि लिखता है ये झोपड़ी में मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जाता त्या महल या मत जाओ शब्द आला, उस महल में जाओ तो सिपाही कहते मत जाओ। दारात ना ही दोरया या झोपड़ी तमाजा, मेरे झोपड़ी में दरवाजा ही नहीं है। महली मऊ बिछाने कंदील श्याम दाने, अम्हा जमीन माने या झोपड़ी तमाजा। मेरे तो जमीन है ना, इसमें कोई दिया है ना, लाइट है ना, कुछ है, पर मैं खुश हूँ। पाहू नि सौख्य माजे देवेंद्र तो हिलाजे, मेरा सुख देख के तो देवेंद्र इंद्र को भी, उसको भी शर्म आती है। शांति सदा विराजे या झोपड़ी तमाजे, मैं खुश हूँ इसमें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिला वो पर्याप्त है। बाबा तूने जो दिया बहुत है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं प्रगतिशील नहीं हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, परंतु जो उसने दिया उसमें मैं तृप्त हूँ। संतुष्टम सततम योगी, हे अर्जुन योगी वो है जो तृप्त है, जो संतुष्ट है हर परिस्थिति में, जो भगवान को धन्यवाद कहे, चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, क्योंकि हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा रही है, हर परिस्थिति मेरे लिए शिक्षक है। इसीलिए कोई शिकायत नहीं है किसी के भी, न व्यक्तियों से है, न इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं, इनजस्टिस होता है। जो हो रहा है वो सत्य है, जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो जन्म जन्म की पुरानी कहानियां पूरी हो रही है। तो पांच, चौथा क्या, एक धन्यवाद। सब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो धन्यवाद करना बहुत आसान है, पर जब कुछ भी हमें लगता है ये नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है और फिर भी हम धन्यवाद कर रहे हैं, दैट इज द रियल लव फॉर द डिवाइन। सम ऑफ द गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स आर हिज अनआंसर्ड प्रेयर्स। इंग्लिश में कहावत है, भगवान की सबसे अच्छी सौगातें कौन सी है, वो प्रश्न जिसके उत्तर उसने कभी दिए नहीं, वो नहीं देना चाहता, और वही उसी में कल्याण है। अगर दे दे तो शायद हम दुखी हो जाए। अगला रति, संस्कृत शब्द है रति, जैसे हिंदी में शब्द है प्यार, प्रेम, प्रीत, स्नेह। ये चार शब्द अपनी डायरी में लिखेंगे और इनमें क्या अंतर है वो आप बाद में सोचना। प्यार, प्रेम, प्रीत, स्नेह, यहाँ हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं रति। रति मीन्स डिवाइन लव ऑफ गॉड, इंटेंस लव ऑफ गॉड, डीप लव। आत्मा की प्यास बिना उस परमात्मा की पूरी ही नहीं होती। आप सब कुछ करो, अमृत वेला छोड़ दो और दिन भर बहुत अच्छी सेवा करो, बहुत अच्छी प्यूरिटी, खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो, किसी मुरली में स्लोगन था, अमृत वेला सुबह सुबह अपने आप को परमात्मा प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी का भी प्रेम आकर्षित न करे, अपने आप ही होगा वो। जो आत्मा भरी हुई है प्रभु प्रेम से, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, neither death nor life, Bible, Old Testament, neither death nor life, ना तो जन्म ना तो मृत्यु, nor nakedness nor wilderness, ना तो हमारे पास गरीबी है इसके वजह से, ना ही जंगल की वीरानी, neither principalities nor angels, nor things present or things to come shall be able to separate us from the love of God. इस संसार की कोई भी चीज हमें प्रभु प्रेम से जुदा नहीं कर सकती, because we live in him, we move in him, we have our being in him. हम उसमें जीते हैं, उसके थ्रू जीते हैं, उसी के प्रति हमारा जीवन है, इसलिए इस संसार का कुछ भी हमें उससे जुदा नहीं कर सकता। ऐसा प्रभु प्रेम, ईश्वरीय अनुराग, विषय विराग, अपने आप वैराग आएगा। When we start seeing and loving the divine, अगला एतबार, फेथ, विश्वास, निश्चय, उस पर पूर्ण निश्चय कि मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये भी मन मन अभाव की स्थिति है। एक व्यक्ति जा रहा है और उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है खाई में, एक डाली पकड़ लेता है, वो नास्तिक है, बस पतली सी डाली है, कभी भी गिरा और नीचे मृत्यु, अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, हे प्रभु अगर तू है और मुझे आज बचा लिया तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा, रोज मंदिर में जाऊंगा, पूजा करूंगा तेरी, पर मुझे बचा तो मैं मानूंगा, आज तक मैंने तेरी कभी पूजा नहीं की, मैं तुझे मानता ही नहीं, पर अगर तू है रियली तो नाउ इट इज यू हैव टू सेव। और डाली को पकड़े हुए, डाली अभी टूटने ही वाली है, भगवान की आवाज आती है, मैं भगवान बोल रहा हूं। वो कहता है हाँ हाँ मुझे बचाओ, क्या करूं? भगवान कहता है डाली को छोड़ दो। वो कहता है पागल समझ के रखा है क्या? फेथ, फेथ, निश्चय, अपने निश्चय पर काम करना है। नेक्स्ट, संपूर्ण पवित्रता, मन मन अभाव के लिए क्या चाहिए? प्यूरिटी। कोई कहता है कि मुझे प्यूरिटी वगैरह पसंद नहीं, मैं बाबा बहुत अच्छा लगता है, पर तो फिर ये प्यूरिटी वगैरह ये सब मुझे बस बताओ, ये ब्रह्मचर्य वगैरह मुझे बस बताओ, मुझे बस बाबा से प्यार है, बस और कुछ नहीं, बाबा और उसकी सेवा, इसको क्या कहेंगे? बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो चलेगा, पर इसमें अगर फेल है तो फेल। दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, 15th November 2003 अव्यक्तवाणी, 15th November, सेंटर ऊपर लगा है ना बाप दादा का चित्र, देखा होगा, प्यूरिटी फर्स्ट सब्जेक्ट है। सुना? ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, ब्रह्मा ने जो इतनी गालियां खाई क्यों खाई? केवल पवित्रता के लिए। ये नहीं कहो हो गया, थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है, सफेद कागज पर जैसे काला दाग है, इसलिए इस भट्टी से अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा, अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को भी रिवाइज करना है। यहां भट्टी में आए हैं तो यहां पर संपूर्ण पवित्रता, एक पतित संकल्प, एक विकारी संकल्प भी पतन है, और वो कहां से घुसती है देखना है, स्क्रीन शॉट, रील्स, यूट्यूब, वो हर चीज जो हमारी पवित्रता में बाधक है उसे उठा के फेंक देना, चाहिए ही नहीं। प्यूरिटी इज फर्स्ट, प्यूरिटी इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, अखंड ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, अनटच्ड प्यूरिटी। अगर इसमें ही फेल है तो कहां से मन मना भव और कहां से याद और कैसा राजो? हाँ सेवा कर सकते, वो भी ऊपर ऊपर से कोर्स करा सकते, भाषण दे सकते, भट्टिया कर सकते, करा सकते, पर खुशी नहीं होगी। खुशी का स्रोत है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण प्यूरिटी। और उस मार्ग में जो जो बाधा है उस सबको अपना दुश्मन समझना है, उन सबको हटा दो। लास्ट संपूर्ण समर्पण। सुबह भी हमने देखा था एक पॉइंट, मन मना याद अर्थात समर्पण। तो ये आठ सूत्र है। पहला बताया, पहला फैंग्स ऑफ सेपरेशन विरह अग्नि, दूसरा बेचैनी, पर ये संसार वाली बेचैनी नहीं है, ये अलग प्रकार की बेचैनी, भगवान के लिए बेचैनी, तड़प रही है चेतना क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। आई सीक धी एंड नथिंग बट धी, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अर्थात कुछ भी नहीं। ये संसार के पद पोजीशन ये सब आते और चले जाते, इससे क्या होगा। अगला धुन, अगला एक धुन लग जाए, ऑब्सेशन, जुनून इसको कहते हैं। ऑब्सेशन इंग्लिश में डिक्शनरी कहती है, ऑब्सेशन इज कंप्लीट कैप्चर ऑफ वन आइडिया, कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन आइडिया इज कॉल्ड ऑब्सेशन। धुन अर्थात उसके अलावा कोई विचार ही नहीं है, बस वो एक ही विचार चल रहा है। अगला, अगला, अगला धन्यवाद, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, छोटी सी झोपड़ी है तो भी धन्यवाद, जो भी है धन्यवाद। अगला प्रति अर्थात तीव्र प्रभु प्रेम, इंटेंस लव ऑफ गॉड। सुबह हमने एक चीज लिखी थी, बाबा मुझे अपनी, क्या था वो, गोद में बिठा दो, मुझे अपने सीने से लगा दो, मुझे अपने दिल के समीप रखो, आगे क्या था, मेरी भावनाओं से पहले मुझे आपसे अथाह प्यार है, और ये केवल वाक्य नहीं मेरी दिल की भावनाएं हैं। कितनी अच्छी लाइनें हैं, ऐसा रोज बाबा को लेटर लिखना है। अच्छा अच्छा नया नया लेटर लिखना है, वो रोज हमको लिखता है ना, तो हम उसको भी लिखना चाहिए। वन साइडेड लव नहीं होना चाहिए, अनरिक्विटेड लव, इट शुड बी बोथ साइडेड, बायलैटरल। किसी को लव लेटर आता है तो कैसे पढ़ते हैं, छुप छुप के अंधेरे में बाथरूम में जा जाके ओढ़कर मोबाइल में लव। अगला विश्वास, निश्चय, एतबार, फेथ। अगला पवित्रता, और लास्ट पूर्ण समर्पण। तो ये आठ अवस्थाएं है मन मना भाव की, और माइंड को जबरदस्ती नहीं, अपने आप धीरे धीरे एकाग्र हो जाए, वो स्थिर हो जाए, जबरदस्ती करेंगे तो काम नहीं होगा। ओम शांति।